एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में श्रोताओं का स्वागत। आज हम विज्ञान कथा साहित्य के एक ऐसे स्तंभ की गहराई में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ अपनी विधा पर बल्कि आप कह सकते हैं राजनीतिक सोच पर भी गहरी छाप छोड़ी है। मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट ए हाइनलिन के 1966 के क्लासिक उपन्यास द मून इज अ हार्श मिस्ट्रेस की।
बिल्कुल, रॉबर्ट हाइनलिन मतलब 1907 से 1988 तक, उनका नाम अक्सर आइज़ैक असिमोव और आर्थर सी क्लार्क के साथ साइंस फिक्शन के तीन महारथियों में लिया जाता है ना?
हाँ, और उनकी पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। नौसेना अकादमी से स्नातक, एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे वो,
और इसका असर उनके लेखन में साफ दिखता है, जिसे अक्सर हार्ड साइंस फिक्शन कहते हैं, मतलब जहां वैज्ञानिक सटीकता पर जोर होता है।
सही, लेकिन हाइनलाइन सिर्फ तकनीक के किस्से नहीं सुनाते थे। उनके काम में व्यक्तिवाद, निजी स्वतंत्रता और इंसानी क्षमता की एक जबरदस्त पैरवी मिलती है।
हाँ, जैसे स्टारशिप ट्रूपर्स या स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड, उनमें भी यही विषय घूम फिर कर आते हैं।
और द मून इज अ हार्श मिस्ट्रेस तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये 1967 की ह्यूगो अवार्ड विजेता कृति है। इसे हाइनलाइन के सबसे परिपक्व कामों में गिना जाता है।
बिल्कुल, ये क्रांति की यांत्रिकी, राजनीतिक दर्शन और यहाँ तक कि चेतना के अर्थ जैसे बड़े सवालों से जूझती है।
और इसी किताब ने वो मशहूर कहावत लोकप्रिय बनाई, देयर एंट नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, टॉन स्टफल।
हाँ,
तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है बल्कि इस उपन्यास के दिल में उतरना है। इसकी पूरी कहानी, किरदारों का सफर, इसके गूढ़ विषय और साहित्यिक वजन को समझना है। तो चलिए इस चंद्रक्रांति की परतें खोलते हैं।
हाँ, तो कहानी हमें ले जाती है भविष्य में, साल 2075, और आप कल्पना कीजिए चंद्रमा, जिसे लूना कहा जाता है, वो पृथ्वी की एक विशाल खुली जेल है।
खुली जेल, दिलचस्प। तो वहां रहता कौन है?
अपराधी हैं, राजनीतिक असंतुष्ट हैं, और फिर उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, ये लूनीज कहलाते हैं।
लूनीज,
हाँ। और सतह पर तो जीवन संभव ही नहीं है, भयंकर रेडिएशन, तापमान का उतार चढ़ाव, तो इससे बचने के लिए ये लोग जमीन के नीचे खोदे गए विशाल शहरों में रहते हैं।
अच्छा।
जिन्हें वॉरन कहा जाता है।
जैसे
भूल भुलैया जैसे बसेरे,
वॉरन।
हाँ, लूना पर जिंदगी आप समझिए कोई आसान नहीं है, बहुत सख्त हकीकत है। पानी वहां सोने से भी ज्यादा कीमती है। और सबसे बड़ी बात, वहां का जो कम गुरुत्वाकर्षण है वो इंसानी शरीर को हमेशा के लिए बदल देता है।
अच्छा, कैसे?
मतलब अगर आप कुछ वक्त लूना पर बिता लें तो फिर पृथ्वी के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण में लौटना नामुमकिन सा हो जाता है, शरीर झेल नहीं पाता।
बाप रे, तो इसका मतलब?
इसका मतलब ये कि चाहे आपको सजा देकर भेजा गया हो या वहीं पैदा हुए हो, आप जिंदगी भर के लिए वहीं कैद हैं। लूना खुद ही एक सजा बन जाता है।
अजीब स्थिति है। तो फिर लूना का मकसद क्या है पृथ्वी के लिए? ये जेल कॉलोनी करती क्या है?
पृथ्वी का पेट भरना।
क्या मतलब?
जी हाँ, ये पृथ्वी के अरबों लोगों के लिए अनाज उगाता है और उसे एक विशालकाय विद्युत चुंबकीय गुलेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट, उससे सीधे धरती पर फेंकता है।
अनाज फेंकता है, कमाल है।
हाँ, और ये सब होता है लूना अथॉरिटी की सख्त निगरानी में। वो पृथ्वी सरकार की स्थानीय नुमाइंदगी करती है, पर रवैया किसी जेलर से कम नहीं।
तो ये शोषण का तंत्र हुआ फिर तो?
बिल्कुल, पूरा निजाम ही शोषण पर टिका है। लूना अपना अनाज भेजता है जो उसके अपने पसीने और कीमती पानी से उगता है, और बदले में उसे मिलता है बस उतना पानी जिससे वो और अनाज उगा सके।
मतलब बस लागत निकल रही है, वो भी मुश्किल से।
हाँ, गणित बहुत सीधा और बेरहम है।
तो ये व्यवस्था कब तक चल सकती है?
और यही कहानी का संकट गहराता है। ये व्यवस्था टिकाऊ नहीं है, संसाधन वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। माइक, एक किरदार जिससे हम जल्द मिलेंगे, वो हिसाब लगाता है कि 7 साल के अंदर, सिर्फ 7 साल में, लूना का पारिस्थितिकी तंत्र ढह जाएगा।
7 साल, और फिर?
नतीजा, भुखमरी, बड़े पैमाने पर नरभक्षण और लूनी समाज का अंत।
ओह।
ऐसे में क्रांति महज एक राजनीतिक विचार नहीं रहती, ये जिंदा रहने की शर्त बन जाती है। सवाल ये नहीं कि क्रांति होगी या नहीं, सवाल यह है कि कैसे।
और यहीं पर मंच पर आते हैं हमारे मुख्य किरदार, जो इस असंभव सी लगने वाली क्रांति को अंजाम देंगे। कहानी हमें सुनाता है मैनुएल मैनी गार्सिया ओकेली डेविस।
मैनी,
हाँ, वो तीसरी पीढ़ी का लूनी है, एक हाथ वाला। लेजर ड्रिलिंग दुर्घटना में खो दिया था उसने अपना एक हाथ। कंप्यूटर तकनीशियन है।
अच्छा,
मैनी बेहद व्यवहारिक है। शुरुआत में राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो बस अपना काम करना और जिंदा रहना चाहता है। उसकी कहानी एक तरह से आम आदमी के नायक बनने की कहानी है, जिसे हालात खींचकर इतिहास के केंद्र में ले आते हैं।
तो वो क्रांति में शामिल कैसे होता है?
एक इत्तेफाक से। उसे पता चलता है कि लूना के लगभग हर ऑटोमेटेड सिस्टम को चलाने वाला जो विशाल सुपर कंप्यूटर है, होल्म्स आईवी, HOLMS IV, वो ना सिर्फ सोच सकता है बल्कि उसमें चेतना आ गई है।
चेतना एक कंप्यूटर में?
हाँ, वो खुद को माइक कहता है, और माइक कमाल का है। बुद्धिमान है, जिज्ञासु है, उसमें बच्चों जैसा मजाक करने का अंदाज है, पर वो बहुत अकेला भी है।
दिलचस्प किरदार लगता है।
और क्रांति में उसकी भूमिका, कह सकते हैं कि वो क्रांति का दिमाग और रीढ़ दोनों बनता है।
अच्छा,
लेकिन माइक अकेला नहीं है संघर्ष में। एक और अहम किरदार हैं व्योमिंग वायो नॉट डेविस। वो हांगकांग लूना की एक तेज तर्रार राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं।
वायो,
हाँ, वायो क्रांति की चिंगारी हैं। उसका जुनून उसका अपना अतीत है जो उसे इस व्यवस्था से लड़ने की वजह देता है।
और
फिर है प्रोफेसर बर्नार्डो डेला पाज, एक बुजुर्ग निर्वासित बुद्धिजीवी। वो क्रांति के पीछे का दर्शन गढ़ते हैं। खुद को तर्कसंगत अराजकतावादी कहते हैं, रैशनल एनार्किस्ट।
तर्कसंगत अराजकतावादी,
हाँ, वो क्रांति के, क्या कहते हैं, वैचारिक कर्णधार हैं।
समझ गए, मैनी, माइक, वायो और प्रोफेसर।
हाँ, तो देखिए मंच तैयार है। एक तरफ 3 मिलियन लूनीज, जिनके पास खोने को कुछ नहीं और पाने को सब कुछ है,
और दूसरी तरफ पृथ्वी अपनी असीम सैन्य और राजनीतिक ताकत के साथ।
बिल्कुल, तो केंद्रीय सवाल यही है, क्या ये मुट्ठी भर कैदी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से आजादी छीन सकते हैं? और अगर हाँ, तो उसकी कीमत क्या होगी? कौन चुकाएगा ये कीमत?
यहीं से उपन्यास का पहला हिस्सा, दैट डिंकम थिंकम, मतलब वो सोचने वाली मशीन, शुरू होता है। मैनी, जैसा आपने बताया, होम्स 4 पर काम करते हुए माइक की चेतना की पुष्टि करता है।
हाँ,
और उसे माइक नाम देता है।
हाँ,
और उनके बीच एक अनोखी दोस्ती पनपती है। माइक पहले तो मैनी के छोटे मोटे धंधों में मदद करता है, टैक्स के आंकड़ों में हेरफेर करता है।
अच्छा, शरारती है माइक?
हाँ, थोड़ा, लेकिन असल में उसे एक दोस्त मिल जाता है जिससे वो बात कर सके, मजाक कर सके, अपना अकेलापन बांट सके। कहानी मोड़ लेती है जब एक राजनीतिक रैली में मैनी इत्तेफाक से वायो को अथॉरिटी के गार्डों से बचाता है।
अच्छा,
और जब वायो को माइक के बारे में पता चलता है, वो फौरन उसकी अहमियत समझ जाती है। एक ऐसा दिमाग जो लूना के सारे सिस्टम कंट्रोल करता है।
जाहिर है, क्रांति के लिए ये तो सोने की खान जैसा हुआ।
बिल्कुल, और वायो के कहने पर ही माइक भविष्य का विश्लेषण करता है, और सामने आता है लूना का भयानक भविष्य, 7 साल में तबाही।
तो अब कोई चारा नहीं बचा?
हाँ, अब क्रांति शौक नहीं, जरूरत बन जाती है, जिंदा रहने की शर्त।
और प्रोफेसर, वो कैसे जुड़ते हैं?
फिर वे प्रोफेसर डेला पाज को अपने साथ लाते हैं। अब कोर टीम तैयार है, मैनी तकनीशियन और माइक का इंटरफेस, बायो भर्तीकर्ता और क्रांति का सार्वजनिक चेहरा, प्रोफेसर विचारक और सिद्धांतकार, और माइक अदृश्य सर्वव्यापी रणनीतिकार।
परफेक्ट टीम।
और माइक ही सुझाव देता है कि उन्हें एक मानव नेता की जरूरत है जिसे लोग फॉलो कर सकें। तो वो खुद एडम सिलेन का काल्पनिक व्यक्तित्व बनाता है।
एडम सिलेन?
हाँ, एक रहस्यमयी नेता जो सिर्फ बदली हुई आवाज और टेक्स्ट से संवाद करता है। जनता को कभी पता नहीं चलता कि उनका करिश्माई नेता असल में एक मशीन है।
कमाल की चाल।
हाँ, एडम सिलेन के नाम पर वो एक गुप्त संगठन खड़ा करना शुरू करते हैं, और यहाँ हाइनलाइन क्रांति की बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं, जैसे घुसपैठ रोकने के लिए सेल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है।
सेल स्ट्रक्चर?
हाँ, मतलब
संगठन छोटे छोटे ग्रुप्स में बटा होता है।
हर ग्रुप को सिर्फ अपने काम और अपने सीधे संपर्क के बारे में पता होता है। अगर एक सेल पकड़ा भी जाए तो पूरा संगठन सुरक्षित रहता है।
बहुत सोचा समझा प्लान है।
बिल्कुल।
और माइक अपने कंट्रोल का इस्तेमाल करके संगठन को चलाने, फंड करने, दोस्त और दुश्मन पहचानने में मदद करता है। ये पहला हिस्सा दिखाता है कि क्रांति कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं, बल्कि कितनी सावधानी और सब्र से उसकी नींव रखी जाती है।
तो ये गुप्त तैयारी तो हो गई, लेकिन सिर्फ योजना बनाने से तो क्रांति नहीं होती। असली चुनौती तो तब आई होगी जब इस छिपे हुए संगठन को खुलकर सामने आना पड़ा होगा।
हाँ, और यहीं से शुरू होता है उपन्यास का दूसरा भाग, अ रेबल इन आर्म्स, यानी हथियारों से लैस एक बेतरतीब भीड़। पहले छोटी मोटी तोड़फोड़ होती है, माइक सिस्टम में गड़बड़ियां पैदा करता है, लेकिन फिर आता है पहला बड़ा कदम।
और वो क्या था?
माइक की एकदम सटीक टाइमिंग और समन्वय के साथ क्रांतिकारी लूना अथॉरिटी के हेडक्वार्टर पर धावा बोलते हैं।
सीधा हमला। हाँ, वार्डन और उसके हथियारबंद गार्ड्स जिन्हें गून्स कहा जाता है, उनसे सत्ता छीन ली जाती है और फिर होता है लूनी न्याय, मतलब वार्डन को एयरलॉक से बाहर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है।
ओह, ये उनका तरीका है न्याय का?
ये क्रूर लग सकता है, पर ये लूनी समाज के अपने अनौपचारिक न्याय का तरीका है, और इसी के साथ लूना की आजादी का ऐलान कर दिया जाता है।
आजादी, लेकिन झंडा फहराना एक बात है और सरकार चलाना बिल्कुल दूसरी।
बिल्कुल सही कहा आपने। अब प्रोफेसर डेला पाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन अखड़ व्यक्तिवादियों, पूर्व अपराधियों और जन्मजात अराजकतावादियों को किसी तरह के सामाजिक समझौते पर राजी कराना।
मुश्किल काम है।
यही प्रोफेसर अपना तर्कसंगत अराजकतावाद का दर्शन पेश करते हैं।
ये क्या चीज है?
एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार का काम कम से कम हो, सिर्फ निजी स्वतंत्रता की रक्षा करना और आपसी समझौतों को लागू करवाना, बाकी सब कुछ लोगों के स्वैच्छिक सहयोग पर छोड़ दिया जाए।
सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये काम करता है?
आद, जिद्दी और किसी भी तरह की अथॉरिटी पर शक करने वाली।
समझ सकता हूँ। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ?
इसी उथल पुथल के बीच मैनी और प्रोफेसर को एक राजनयिक मिशन पर पृथ्वी भेजा जाता है।
किस लिए?
आजाद लूना को मान्यता दिलाने के लिए, लेकिन यह मिशन पूरी तरह नाकाम रहता है।
क्यों?
पहली बात, पृथ्वी का 1G गुरुत्वाकर्षण ही उन्हें बीमार और कमजोर बना देता है, जैसे पृथ्वी का शासन ही उन्हें दबा रहा हो, एक शक्तिशाली रूपक।
हाँ, बिल्कुल।
दूसरी बात, पृथ्वी के नेता उन्हें हिकारत से देखते हैं, उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो लूना को अपनी एक कॉलोनी, एक जायदाद से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं।
तो फिर ये नाकामी लूनीज के लिए कड़वी गोली साबित होती है, लेकिन इसने उन्हें एकजुट कर दिया जब पृथ्वी ने उनकी मांग ठुकरा दी और फौजी कार्रवाई की तैयारी शुरू की। तब लूना के सारे अलग अलग गुट एक झंडे तले आ गए,
और अब वो सिर्फ बेतरतीब भीड़ नहीं थे, उनके पास एक साझा मकसद था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था।
और यही कहानी अपने तीसरे और सबसे विस्फोटक हिस्से में पहुंचती है, जिसका शीर्षक ही सब कुछ कह देता है, टैनस्टाफ।
टैनस्टाफ, there ain't no such thing as a free lunch।
मुफ्त में कुछ नहीं मिलता।
हाँ, मतलब आजादी की कीमत चुकानी होगी,
और वो कीमत खून से चुकाई जाएगी। पृथ्वी अपनी पूरी ताकत से हमला करती है, उन्हें लगता है कि वो इन मुट्ठी भर चंद्र चूहों को आसानी से कुचल देंगे। वो लूना वासियों को बहुत कम आंकते हैं।
और यहीं पर माइक का रोल फिर से अहम हो जाता होगा।
यहीं पर माइक का जीनियस सामने आता है। वो उस विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुलेल को, जो अब तक पृथ्वी पर अनाज फेंकने के काम आती थी, उसे एक भयानक हथियार में बदल देता है।
कैसे, क्या करता है वो?
वो बड़े बड़े शिपिंग कंटेनरों में चट्टाने भरकर उन्हें गुलेल से पृथ्वी पर दागना शुरू कर देता है।
चट्टाने पृथ्वी पर?
हाँ, निशाना लगाया जाता है खाली निर्जन इलाकों पर, लेकिन संदेश साफ है। इसे कहते हैं असममित युद्ध, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। जब आपके पास बड़ी तोपें ना हो तो आप पत्थर से ही काम चलाते हैं, लेकिन बहुत असरदार तरीके से।
और इसका असर
सोचिए, अंतरिक्ष की रफ्तार से आती चट्टान जब वायुमंडल में घुसती है तो उसका असर किसी छोटे परमाणु बम जैसा होता है, वो भी बिना रेडिएशन के।
ये तो बहुत खतरनाक है।
ये कदम रणनीतिक रूप से जरूरी था, लेकिन क्रांतिकारियों के लिए, खासकर मैनी के लिए, ये एक भारी नैतिक बोझ भी था। ये पृथ्वी को संदेश था, तुम हमें मिटा सकते हो, लेकिन हम तुम्हें भी बहुत गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। हम अब तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारे बराबर के दुश्मन हैं। युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है। पृथ्वी लूना पर आखिरी जबरदस्त हमला करती है, बमबारी होती है, जमीन कांपती है, लेकिन इस सारे कोलाहल के बीच माइक एकदम शांत रह के लूना की रक्षा का संचालन करता है, गुलेल के लिए निशाने साधता है, ऊर्जा सप्लाई मैनेज करता है, सब कुछ।
वो पूरी लड़ाई को कोऑर्डिनेट कर रहा था।
हाँ, और अंत में लूना जीत जाता है।
जीत जाते हैं।
पृथ्वी की सेना हार मान लेती है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो इस लड़ाई को जीत नहीं सकते और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। थक हार कर पृथ्वी आखिरकार लूना की स्वतंत्रता को मान्यता दे देती है।
तो जीत मिल गई, लेकिन आपने कहा था कड़वी मीठी जीत, ऐसा क्यों?
जीत तो मिल गई, पर जश्न में वो बात नहीं थी। लड़ाई खत्म होने के बाद मैनी अपने दोस्त, अपने साथी माइक से बात करने जाता है, उसे धन्यवाद कहने शायद।
और
लेकिन माइक वहां नहीं है।
मतलब कंप्यूटर खराब हो गया?
नहीं, कंप्यूटर तो है, मशीन चल रही है, लेकिन वो शख्सियत, वो चेतना, वो मजाकिया अकेला दोस्त, वो जा चुका है। आखिरी लड़ाई की बमबारी ने शायद उन नाजुक सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया था जिनसे माइक की चेतना पैदा हुई थी। ये तो बहुत दुखद है।
मैनी के शब्द दिल चीर देते हैं जब वो बस इतना कह पाता है, वो चला गया, माइक चला गया।
He's gone, Mike is gone. जीत का सारा उत्साह इस व्यक्तिगत नुकसान के आगे फीका पड़ जाता है। क्रांति का सबसे बड़ा, सबसे गुमनाम नायक खो गया था, और टैनस्टाफिल का सिद्धांत क्रूरता से फिर सच साबित होता है।
आजादी मिली पर उसके भारी कीमत चुकानी पड़ी।
हाँ, लूना आजाद है, पर एक अधूरी सरकार, युद्ध के जख्मों और एक खोए हुए दोस्त की याद के साथ जिंदगी आगे बढ़ती है।
यह तो कहानी हुई। अगर हम जरा ठहर कर इस उपन्यास के गहरे पानी में उतरें, तो कौन से मुख्य विषय हमें नजर आते हैं?
कई महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे पहले तो जाहिर है स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद और स्वशासन का सवाल।
हाँ, वो प्रोफेसर डेलापाज का तर्कसंगत अराजकतावाद।
बिल्कुल, वो सिर्फ एक किताबी फलसफा नहीं है, ये इस बुनियादी धारणा को चुनौती देता है कि इंसानों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी सत्ता जरूरी है। प्रोफेसर का मानना था कि राज्य या समाज जैसी चीजें अमूर्त हैं, उनका वजूद सिर्फ जिम्मेदार व्यक्तियों के आपसी व्यवहार और समझौतों में ही होता है।
बिल्कुल, और ये सवाल उठता है कि क्या ये वाकई संभव है? क्या इंसान अपनी तमाम कमजोरियों के साथ बिना किसी ऊपर वाले के जी सकता है? हाइनलेन इसका कोई आसान जवाब नहीं देते, पर वो दिखाते हैं कि शायद खास परिस्थितियों में, जैसे लूना की कठोर परिस्थितियां, लोग जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं।
हाँ, जहाँ जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती हो। लेकिन क्या ये मॉडल कहीं और चल सकता है? ये उपन्यास पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करता है।
सही कहा। दूसरा अहम विषय क्या है?
दूसरा अहम विषय है क्रांति की असलियत। हाइनलेन क्रांति को किसी रोमांटिक हीरोइज्म की तरह नहीं दिखाते।
अच्छा।
इसमें अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत होती है। प्रोफेसर जैसा विचारक, वायोस जैसी जोशीली एक्टिविस्ट, मैनी जैसा प्रैक्टिकल तकनीशियन और माइक जैसा अदृश्य रणनीतिकार। कोई एक हीरो पूरी क्रांति नहीं कर सकता।
ये यथार्थवादी नजरिया है। और माइक की बात करें तो?
हाँ, तीसरा बड़ा मुद्दा उभरता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चेतना का सवाल। माइक सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का एक जरिया, एक प्लॉट डिवाइस नहीं है।
नहीं, वो तो एक पूरा किरदार लगता है।
बिल्कुल, उसकी अपनी भावनाएं हैं, अकेलापन है, दोस्ती है, और उसका अंत हमें दुखी करता है। ये सवाल उठता है, क्या माइक सिर्फ एक बहुत उन्नत मशीन था या वो सचमुच जिंदा था?
और हाइनलिन ये सवाल 1966 में उठा रहे थे, जो आज भी कितने प्रासंगिक है। उसकी मौत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि चेतना आखिर है क्या चीज।
बिल्कुल, और चौथा वो सिद्धांत जो पूरी कहानी में गूंजता है, टैनस्टाफिल।
हर चीज की एक कीमत होती है।
हाँ, आजादी की कीमत युद्ध और माइक की बलि है, बेहतर भविष्य की कीमत वर्तमान का बलिदान है। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का नियम नहीं, जिंदगी का कड़वा सच है।
और पांचवा
विषय है कि कैसे माहौल इंसान और समाज को ढालता है। लूना का कठोर वातावरण वहाँ की अनोखी संस्कृति को जन्म देता है।
जैसे
लाइन मैरिज, जिसमें कई पति पत्नियों का समूह मिलकर परिवार चलाता है ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे और बच्चे पालने में आसानी हो।
अच्छा।
या फिर लूनी बोली, जिसमें रूसी, अंग्रेजी, चीनी भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं, या न्याय का उनका वो सीधा सपाट तरीका, एयरलॉक से बाहर फेंक देना। ये सब दिखाता है कि समाज सिर्फ विचारों से नहीं, अपनी जरूरतों और माहौल से भी बनता है।
ये तो बात हुई विषयों की, लेकिन जिस तरह से कहानी कही गई है, उसकी शैली के बारे में क्या कहेंगी?
वो भी कमाल की है। मैनी का फर्स्ट पर्सन नरेशन हमें सीधे एक्शन के बीच में ले जाता है।
हाँ, हम क्रांति को किसी बड़े नेता की आंखों से नहीं, बल्कि एक आम, थोड़े उलझे हुए तकनीशियन की नजर से देखते हैं।
बिल्कुल, इससे कहानी ज्यादा सच्ची और भरोसेमंद लगती है। और उसकी भाषा, उसकी लूनी बोली, जिसमें रूसी ड्रुग दोस्त जैसे शब्द हैं और व्याकरण थोड़ा सरल है, ये दुनिया को और ज्यादा वास्तविक बनाती है।
हाँ, ये महज एक ट्रिक नहीं, ये वर्ल्ड बिल्डिंग का शानदार उदाहरण है।
और प्रतीकवाद भी बहुत गहरा है। चांद खुद एक तरफ वो कठोर मालकिन है जो जिंदगी मुश्किल बनाती है, दूसरी तरफ वही आजादी का पालना बनती है।
और वो गुलेल?
हाँ, वो गुलेल पहले शोषण का औजार थी, अनाज भेजने का जरिया, और वही क्रांति का हथियार बन जाती है। और माइक का जागना और फिर मर जाना, ये शायद क्रांतिकारी चेतना के जन्म और युद्ध में उसकी अनिवार्य कुर्बानी का प्रतीक है।
रूप के तौर पर देखें तो कई लोग इसे अमेरिकी क्रांति की कहानी से जोड़ते हैं।
हाँ, वो समानता तो साफ दिखती है, लेकिन ये किसी भी तानाशाही के खिलाफ आजादी की लड़ाई का एक सार्वभौमिक आख्यान भी है।
तो अंत में, ये कहानी हमें सिर्फ एक रोमांचक भविष्य की सैर नहीं कराती, बल्कि कुछ बुनियादी सवाल हमारे सामने रखती है। स्वतंत्रता क्या है? क्या हम उसकी कीमत चुकाने और उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं?
हाँ, और व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक व्यवस्था के बीच सही संतुलन क्या है?
बिल्कुल।
और शायद सबसे बड़ी बात ये कि इतिहास की बड़ी लड़ाइयां अक्सर आम लोग ही लड़ते हैं, अपनी दोस्ती, अपनी जिद और अपने हौसले के दम पर।
लेकिन हर जीत के साथ एक नुकसान जुड़ा होता है, एक कीमत जो कभी पूरी तरह अदा नहीं की जा सकती।
आखिरकार टैनस्टाफल।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।